الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج کل عام لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہذا وہ وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے اور مدارس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے اور سوسائٹیز ایکٹ جو ہے وہ وزارت صنعت و تجارت سے تعلق رکھتا ہے یا وزارت داخلہ سے تعلق رکھتا ہے تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم کیوں اس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہم رجسٹر ہونا پسند کرتے ہیں بنسبت وزارت تعلیم کے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹیز ایکٹ کیا چیز ہے سوسائٹیز ایکٹ در حقیقت ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت آپ کوئی ایسی سوسائٹی بنا سکتے ہیں ایک پرائیویٹ ادارہ بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو آپ کو تعلیم دینی ہو آپ کو کوئی رفاہی کام کرنا ہو آپ کو کوئی اپنا تربیتی ادارہ قائم کرنا ہو پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کرنی ہو یہاں تک کہ اگر کوئی آرٹس کونسل قائم کرنی ہو وہ سارے کے سارے پرائیویٹ ادارے اس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ پرائیویٹ اداروں کو رجسٹر کرنے کا ایک داخانہ ہے کہ جس کے ذریعے پرائیویٹ ادارے ایک قانونی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں اب وہ پرائیویٹ ادارے اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کے جو کچھ عہدیدار ہوتے ہیں یا ان کے جو مجلس انتظامی کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے تمام امور کے نگراں ہوتے ہیں ان کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ اپنے بنائی ہوئی سوسائٹی کے اندر جو چاہے کریں صرف اتنا ہے کہ وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں جس کا معنی ہے کہ ان کا وجود قانونی طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن اپنے اندرونی معاملات میں وہ بالکل خود مختار آزاد ہوتے ہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود مختار آزاد ہیں بلکہ جب ہی اس میں رجسٹر ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قوانین کے تحت اپنے نظام کے تحت اپنے ادارے کو چلا سکتے ہیں دوسری طرف وزارت تعلیم جو ہے وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اور حکومت کے ادارے کے حیثیت سے وہ اپنے سارے تعلیمی نظام کو کنٹرول کرتا ہے اس میں یونیورسٹیاں بھی آتی ہیں اس میں کالج بھی آتے ہیں اس میں اسکول بھی آتے ہیں جو سرکار کے تحت قائم ہو رہے ہیں تو وہ اس نظام کے پابند ہو جاتے ہیں تو سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو تقریباً یہ فرق ہے کہ اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کوئی ادارہ رجسٹر ہے وہ پرائیویٹ ہے اور اس کو اپنے نظام کو چلانے کا مکمل اختیار حاصل ہے اور اگر کوئی کسی وزارت کے تحت وزارت کا حصہ بن گیا تو اس وزارت کے نظام کے تحت اندر وہ آ گیا ہمارے مدارس کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے وقت سے اس بات پر ہے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہمیں حکومت سے کوئی امداد چاہیے نہ ہمیں حکومت سے کوئی پیسے چاہیے نہ حکومت کی ہمیں مداخلت چاہیے ہم اپنے طریقہ کار پر جو اکابر کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے اس کے تحت چلنا چاہتے ہیں کوئی ایسے ادارے کو ہم اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے اندرونی نظام کے اندر اندازی کرے جو ہمارے طریقہ کار میں مداخلت کرے جو کسی طرح بھی ہمارے مقاصد پر اثر انداز ہو وہ ہم مدرسے کو اس سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں और ये आजादी हमें सोसाइटी एक्ट के तहत मिलती है क्योंकि वो प्राइवेट है, उसमें सारे इदारे प्राइवेट हैं। बहुत से तालीमी इदारे अब भी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, इसलिए कि वो प्राइवेट हैं और प्राइवेट तरीके से अपने निज़ाम के तहत चलना चाहते हैं। हमें इस बात का इसलिए इस बात पर इसलिए इसरार है कि वज़ारत तालीम के साथ अगर हम मुंसलिक हो गए, और मेरी तो अव्वल रोज से यही राय है कि उसके साथ मुंसलिक होना, हमने बहुत ही इंतहाई दबाव के हालात में इतने बात तस्लीम की थी कि भाई हमारा डाकखाना बदल जाए और वज़ारत तालीम के तरफ जाओ जाए, लेकिन जो अंदेशा था और जिसकी बिना पर हम वज़ारत तालीम में जाने से परहेज कर रहे थे, वो उस वक्त सामने आ गया कि जिस दिन एक दिन हमारे साथ मुज़ाकरात के अंदर एक मुफाहमती याददाश्त तैयार हुई जिसको आज मुआहदे का नाम दिया जा रहा है। वो दरहकीकत इस्तिलाही एतबार से वो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुफाहमती याददाश्त। कानून एतबार से उसका कोई असर नहीं होता, सिर्फ ये बात होती है कि अभी बात चल रही है उसके अंदर कुछ चीज़ों पर मुफाहमत हुई। उस मुफाहमत का एक हिस्सा ये था कि हमारे बैंक अकाउंट खुलेंगे, हम खुद मुख्तार और आज़ाद रहेंगे। दूसरा ये कि हमारे गैर मुल्की तलबा जो हैं वो उनको दाखिला मिलेगा, वीज़े मिलेंगे, और उसमें ये भी था कि जब तक इसके ऊपर पूरी तरह अमल नहीं हो जाता, सोसाइटीज एक्ट के तहत जो मदारिस रजिस्टर हो रहे हैं वो अपनी जगह रजिस्टर होते चले जाएंगे। लेकिन यूं ही ये बात हमारी इस मुफाहमत याददाश्त की मरहले में अभी थी, उसी के साथ 1 अरब का बजट बनाकर एक डायरेक्टरेट कायम कर दी गई, जिस जो एक साबिक मिलिट्री साबिक फौजी मेजर जनरल के मातहत, और उसके लिए वो कायम करने शुरू कर दिए गए दफातर मुख्तलिफ जगहों पर, और उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन का आगाज भी कर दिया गया। तो ये मरहला था जिसमें हमें अपने उस नुक्ते नज़र की बिल्कुल वजाहत सामने आ गई, जो हम जो कहते थे कि हम तालीम के अंदर जाएंगे तो हम फिर किसी निज़ाम के अंदर फंस कर उसके तमाम इशादात के ताबे होंगे। चुनाचे अगरचे उसमें ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि मदारिस के जो है अपने निज़ाम में आज़ाद और खुद मुख्तार रहेंगे, ये लिखा हुआ है उसके अंदर भी, लेकिन आखिर में ये लिखा हुआ है कि वक्तन फवक्तन वज़ारत तालीम की तरफ से जो हिदायत आएंगी मदारिस के पाबंद होंगे। तो एक तरफ ये कहा है और दूसरी तरफ ये भी कहा है, लिहाजा उसका नतीजा ये होगा कि हमारे मदारिस के ऊपर हुकूमत, हम ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह देना चाहते हैं कि किसी हुकूमत के मातहत होकर हम अपने निसाब निज़ाम को जारी नहीं रख सकते, न रखना हमारे लिए जहर कातिल है। लिहाजा हमने अंजाम देखे हैं, हमने सऊदी अरब देखा है, हमने इमारात देखा है, हमने मिस्र देखा है, हमने शाम देखा है, और वहाँ पर मदारिस को किस तरीके से ख़त्म किया गया, मदारिस को किस तरीके से दबाया गया। आज वहाँ पर कोई कलमा हक कहने वाला मौजूद नहीं है, या हो तो उसकी जगह जेल होती है या उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के लिए बनाया, और पाकिस्तान को दरहकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का एक किला बनाया है। तो यहाँ हम ये सूरत हाल किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मदारिस और हमारे उलमा वो उस तरह हो जाएं कि उनके सामने कुछ भी होता रहे और वो अपनी ज़बानों को बंद रखें और शैतान अखरस बनकर ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा ये चाहे जब किसी भी चीज़ को घेरना होता है तो शुरू में सारी पाबंदियाँ आयद नहीं होती, शुरू में उसके लिए एक दाम डाला जाता है, उसके लिए दाना डाला जाता है, तो उसके बाद फिर आगे जाकर उसको किसी वक्त में घेरा जाता है। यही तरीक़ेकार रहा है पूरी तारीख में। तो अब अगर से उसमें लिखा हुआ है कि निजाम के ये अपने आजाद और खुदमुख्तार रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक मर्तबा जब ये इस दायरे के अंदर आ गए और उसमें यह लफ्ज मौजूद है कि वज़ारत तालीम की तरफ से वक्तन फ़वक्तन हिदायत जो मिलती रहेंगी उसको उसके पाबंद होंगे, तो अब आप देखिए आज किसी की हुकूमत है कल किसी और की हुकूमत होगी, वो लोग भी हुकूमत में वज़ारत तालीम के अंदर आएंगे जो ये कह रहे हैं कि मदारिस जो हैं वो जहालत की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिन्होंने अलान ये बात कही है, जिन्होंने ये कहा है कि मदारिस तो ये सिखाते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, गोया उनको मजाक उड़ाकर कि मरने के बाद क्या होगा, कि हालात बढ़ाने वाले मदारिस हैं ये, दुनिया के मौजूदा ज़िंदगी के साथ कैसे चल सकते हैं, वो भी तालीम के निज़ाम के अंदर आ सकते हैं, और कल को कौन आता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लिहाजा मदारिस को उन इस दायरे के अंदर लाने की वजह लाने के हम बिल्कुल सख्ती के साथ मुखालिफ हैं, और चूँकि सोसाइटीज एक्ट एक प्राइवेट इदारों का कानून है, वो उस वास्ते हम एक प्राइवेट मदारिस के तौर पर इस्तेमाल होना चाहते हैं, इस अपना काम करना चाहते हैं जिसमें हमारे काम में कोई मुदाखलत ना हो, तो हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर है, विफाकुल मदारिस अब पूरी तरह बाखबर है और इस बात का यकीन रखता है कि हमें एक आलिम को मौजूदा दौर के अंदर अपना पैगाम बेहतर तरीके से पेश करने के लिए जिन मालूमात की ज़रूरत है हम अपने मदारिस में वो मालूमात पढ़ाना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहे जो सारी दुनिया ये बात कहकर ये नामाकूल बात कहती है कि ये मदारिस से डॉक्टर क्यों नहीं पैदा होते और इससे लॉयर क्यों पैदा नहीं होते और इससे इंजीनियर क्यों नहीं पैदा होते और ये किसी मिलिट्री के अंदर ये कमीशन क्यों नहीं लेते, और इस बात को बड़े फख्र के साथ बयान किया जाता है कि फला मदरसे के लोग जो हैं वो कमीशन ले चुके हैं, वो ब्रिगेडियर बन चुके हैं, वो कर्नल बन चुके हैं। अरे भाई, ये मदरसा कर्नल और ब्रिगेडियर पैदा करने के लिए नहीं था, ये कुरान और सुन्नत की का इल्म महफूज करने के लिए था, यह आलिम पैदा करने के लिए था। ये बताओ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किस कौन से सरकारी इदारे के अंदर इस्लाम की तालीम दी जा रही है, हाफिज इतने पैदा हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर कभी ये किसी ऐलान नहीं सुना होगा किसी ने कि हमारे यहाँ तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं है, हाफिज हमें फराम किया जाए, हाफिज ज्यादा है मस्जिदें कम है, कहाँ से पैदा हो रहे हैं यह हाफिज जो कुरान करीम की तस्की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तरावी पढ़ाने के लिए मौजूद हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से, ये मदारिस है जो ये सब पैदा कर रहे हैं। कोई आदमी ये बताए कि क्या इस माशरे की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी शख्स को कोई दीनी मसला पेश आ जाए तो उसका जवाब देने वाला कोई मौजूद हो, क्या आज ये सारी दुनिया देख ले कि अगर किसी मुसलमान को कोई निकाह तलाक का भी मसला पूछना होता है, बेउशरा का भी पूछना होता है, नमाज और रोजे का पूछना होता है, तो वो क्या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाते हैं जिसने इस्लामिक स्टडीज में एमए की डिग्री ले रखी है, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं प्रोफेसर के पास जो इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा है, वो अगर जाते हैं तो उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कुरान और हदीस का फिकह का उसके उसूल फिकह का पूरा इल्म है, उनके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि जानते हैं कि सही इल्म इनके पास है, दीन इनको सही तरीके से आता है। ये सारा काम मदारिस इसलिए कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि हम किसी के तसल्लुत के हम गवादार नहीं हैं, हम वो बात कहेंगे जो कुरान कहता है, हम वो बात कहेंगे जो हदीस कहती है, हम वो बात कहेंगे जो हमारा दीन कहता है, उसकी वजह से हम उसमें कोई मुदाखलत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम अपने फर्ज मनसबी में ज़बरदस्त कोताही के और अल्लाह और रसूल के साथ जो हमने अहद किया है उससे गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। इसलिए ये फ़र्क है कि धागा लफ्ज़ों में के मदारिस प्राइवेट रहें या सरकार के तहत रहें, सीधी सी बात यह है। प्राइवेट रहे या सरकारी तसल्लुत में रहे, बुनियादी सवाल ये है। तो क्योंकि सोसाइटी एक्ट में हम प्राइवेट तरीके पर कर रहे हैं, उसका सनत इजारत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक एक सोसाइटी से है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो सोसाइटी कुछ भी कर सकती है। जैसे ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट जो चाहे कर सकता है, इसी तरह सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होकर एक सोसाइटी बनती है और सोसाइटी वो अपने निज़ाम के मुताबिक जो चाहे कर सकती है। और वज़ारत तालीम में जाएंगे तो हम सरकार के मातहत होंगे, ये हमारी गुजारिशात है, ये हमारा असल मकसूद, और इस वजह से हम इस पर डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।